Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
अब नणन को कुछ नहीं मिला तो बोलती है कि भाई का विवाह होना बेकार हुआ. सास ससुर को कुछ नहीं मिला तो बोलते हैं बेटे का विवाह कराना बेकार हुआ. ऐसा ताना उसको मारे कि मायके से कुछ भी लेके नहीं आई. लेकिन उसका जो पति था, जिसका नाम भी बड़ा सुंदर, हृदयेश, हृदय का स्वामी, वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था कि हमें जो चाहिए वो मिल गई, पत्नी अच्छी मिल गई और क्या चाहिए. और आजकल लोग क्या चाहते हैं, पत्नी जैसी भी हो, कन्या से शादी कम, धन से शादी ज्यादा करते हैं लोग. कभी कोई नहीं पूछते लड़का कैसा मिला, लड़की कैसी मिली, कितना दिया, कितना लिया. आज देखो पुराने जमाने की बात है, तब भी ऐसी भाषा थी. लोग बोलते ना आजकल जमाना बदल गया, सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, ये सब सुनाते हैं लोग. लेकिन ये प्राचीन परंपरा है, पहले से रहा होगा सिस्टम. ससुराल वाले ताने मार रहे. थोड़े दिनों के बाद देवरों की शादी हुई और वो जो देवरानियां आई अपने मायके से बहुत सामान लेके, तो उन सब की इज्जत बढ़ गई और इसकी इज्जत और घट गई. पति से प्रेम तो मिल रहा है लेकिन ससुराल वाले जो है प्रेम करने को तैयार नहीं, कोई कुछ लेके नहीं आई. अब ये जब पत्र लिखे अपने पिता को कि मुझे बुला लो, तो पत्र मिल जाए सौतेली मां को, गायब कर दे, इधर उधर गोलमाल कर दे. पिता को पत्र लिख तो रही है लेकिन पिता को पत्र तो मिले. पिता को मन में भी आता था, अरे बेटी को विवाह करके भेज दिया, अब उसको थोड़ा बुला लेते हैं. कहा भी पत्नी से कि वो गई है तो उसको बुला लाते हैं, तो कहती थी हाँ हाँ मैंने पत्र लिखा था. उसका जवाब आया कि वहां बहुत काम है और सास ससुर बहुत प्रेम कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं. सारी गलत फहमी, कैसा वातावरण बनता है. देखो जब प्रारब्ध खराब होता है ना आदमी का, तो जहां जहां आप जाओगे तत्रै वयान्त्यापद प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहित तत्रै वयान्त्यापद. जब समय खराब चलता है, वह व्यक्ति यदि भोजन बनते समय हाथ लगा दे, भोजन भी खराब हो जाता है. पेड़ लगाए सूख जाता है, लगता नहीं. बोलना चाहता है अच्छा लेकिन लोग उसका उल्टा अर्थ निकालते. ये सब किस वजह से, तो समय की जब उल्टी गिनती चलती है तब ऐसा होता है. ससुराल की तरफ ऐसा व्यवहार, उधर सौतेली मां का ऐसा व्यवहार. परेशान होकर के ससुराल के पास ही नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही थी, जाके नर्मदा किनारे बैठे और नर्मदा का दर्शन करके मन ही मन जब आत्मचिंतन करे थोड़ी शांति मिलती थी. फिर लौट के घर आ जाए, देखा पत्र भेजती हूं, पिताजी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है और इधर ससुराल वाले का भी ऐसा ही व्यवहार है, तो मन में वैराग्य आता है. वैराग्य के लिए तो कुछ न कुछ बानक चाहिए ना, नहीं तो जल्दी कोई प्रवृत्त नहीं होते इसमें. ठीक है आप लोगों ने सुना राग द्वेष हम लोगों के अंदर स्वाभाविक है, जन्मजात है, संस्कार के कारण से है. लेकिन वैराग्य के लिए अपनी तरफ से कुछ प्रयास करना पड़ता है. वैराग्य अपने आप नहीं होता, अपने आप हो जाए तो उसमें भी कोई पूर्व जन्म का संस्कार होगा तभी होगा. अन्यथा देख ही रहे दिन रात दुर्दशा भुगत रहे, घर परिवार में क्लेश है, तनाव है, फिर भी कभी ये मन में भाव क्यों नहीं आता कि आखिर उसको जानने की कोशिश क्यों नहीं करते जो साक्षात आनंद स्वरूप है. क्योंकि जिस धन आदि की प्राप्ति के लिए हम लोग इतना प्रयास करते हैं, इस धन से आप संसार की वस्तु खरीद सकते हो लेकिन मन की शांति इस धन से कभी मिल नहीं सकती. इसलिए तो कह दिया कहां पर है, शायद कठोर परिषद में है ना, कि ये जो मनुष्य है न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, इस वित्त से इस धन से कभी तृप्ति नहीं मिल सकती. फिर कौन सा धन चाहिए. जब राजा जनक का जो साकल्य के साथ संवाद होता है, उसने कहा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातेर दातु परायणम, संस्कृत में धन का एक नाम है रई, रई बोलते हैं। और वो रई रूपी जो धन है वह अपने साम्राज्य की प्राप्ति, स्वस्ति साम्राज्यम राज्यम वैराज्यम भौज्यम पारमेष्ठ्यम, ये जो मंत्र बोला जाता है मंत्र पुष्पांजलि में, तो अपने साम्राज्य की प्राप्ति, अपने आत्मा में स्थित हो जाना, इतना बड़ा जो धन है इसकी जब तक प्राप्ति न हो जाए, बाहर के चाहे सारी चीजें क्यों न मिल जाए फिर भी कभी तृप्ति मिल नहीं सकती। इसलिए जब नर्मदा किनारे जाती थी, थोड़ा चिंतन करती थी, मन में जो शांति मिले उसके लिए बार बार वहीं जाके बैठ जाए। एक दिन देखती क्या है, उस नदी के किनारे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, पास में घाट था, वहां कपड़ा धोते थे धोबी लोग, आज देख रहे कोई कपड़े नहीं धो रहे, सब लोग दूसरे काम में लगे। अब उसको जिज्ञासा हुई क्या हो रहा है, पास में गई देखने के लिए, कहा क्या बात है आज आप लोग कपड़ा धोना छोड़ दिया, क्या कर रहे हैं? धोबी लोग तो जानते थे महाराज की बहू है, तो बोले रानी जी आप आए बड़ा अच्छा हुआ, और हम लोग जो ये कर रहे हैं ना भगवान को धन्यवाद ज्ञापन करने जा रहे हैं, शंकर जी की पूजा करने जा रहे हैं। क्यों क्या हुआ? बोले हम लोग धोबी हैं, 12 महीना में कम से कम 10 महीना हम लोग कमाते, लेकिन 2 महीने हमारी कमाई बंद हो जाती है। 10 महीने तो हम यही बोलते रहते भगवान को बारिश मत करना बारिश मत करना, तो हमें कपड़े सुखाने में दिक्कत होती है, लेकिन ये श्रावण और भाद्रपद 2 महीने बारिश हो जाए ना, फिर हमारे 10 महीने कपड़े धोने के लिए पानी का इंतजाम हो जाता है। तो बारिश चाहिए भी हमें, लेकिन हमेशा नहीं चाहिए। तो अब ये भाद्रपद का अंतिम दिन है, इसलिए हम भगवान को जो है ना कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि हे प्रभु आपने हमें इतना जल दे दिया, अब आगे बारिश मत करना और हमारा धंधा ठीक से चले। इस उपलक्ष्य में भगवान को धन्यवाद देने के लिए हम लोग शिव जी की पूजा का आयोजन कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई उसको देख करके, उसके मन में आया कि ऐसी पूजा मैं भी करूं तो कितना अच्छा हो। तो पूजा करने की विधि उन लोगों ने बता दिया, शिवलिंग था ही, घर में पूजा करने लगी। धीरे धीरे पूजा करते करते भगवान परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कैसे न कैसे करके फल देते हैं, दिखता तो नहीं है लेकिन मालूम पड़ता है। मालूम पड़ जाए तो वह व्यक्ति इतना निष्ठावान होगा, जैसे कल आप लोगों ने सुना विधि में रुचि रखने वाले व्यक्ति विधि की प्रधानता मान करके भगवान का मंदिर बंद पड़ा रहे, हम पूजा नहीं करेंगे, और वो कह रहा है कि नहीं हमारी इच्छा है कि पूजा हो, भील कह रहा है पूजा हो और पंडित जी ने मना कर दिया, हम नहीं सिखाएंगे तुमको। अब इसके मन में जो प्रेम उदित होता है, ससुराल में आके पूजा करने लगती है, धीरे धीरे उसका जो पति है हृदयेश सोचता है बहुत दिनों तक रह लिए माता पिता के साथ, कुछ जो है अपने राज्य को बढ़ाए आगे बढ़ाए, कुछ सेनापति को लेकर के और अगल बगल के देशों के ऊपर विजय प्राप्त किया और एक अपने अलग से राजधानी स्थापित की। अब जो है इसका नाम क्या था, राधा। राधा के दिन अब बदलने लगे, अब तो रानी बनकर के रहने लगी। पति ने अलग राज्य स्थापित किया, ससुराल का जो दुख था वो दूर हुआ, और ये खबर धीरे धीरे सौतेली मां मायके में भी खबर पहुंची, क्या उसकी स्थिति अच्छी हो गई है। मन ही मनो सोच रही कि ये जो कुछ भी हो रहा है भगवान शंकर के पूजन का ही फल है, नहीं तो एक एक दिन काटना जहां मुश्किल हो रहा था। यही तो होता है ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, और जब ये आ जाए कि अच्छे दिन आ गए, कितना होता है बदलाव मन में आता है, आने वाले हैं आएंगे, एक अभी आशा है, और जब आप उस दिन को देखने लग जाओ तो लगता है कि हे प्रभु मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी दिन हमें देखने को मिलेगा। दुख की घड़ी निकल जाए और सुख की जब घड़ी आती है, समझ लेना से भगवान की बड़ी कृपा हुई। शिव जी के पूजा में और उत्तरोत्तर उसकी श्रद्धा बढ़ने लगी। थोड़े दिनों के बाद होता क्या है, मायके पक्ष में मामला थोड़ा कमजोर होने लगा। अब वो जो भोज था ना सौतेला भाई, उसने कहा अरे बहन को हम लोगों ने बुलाया नहीं, उसके मन में ये आ गया कि बहनोई जो है उनके पास तो है ही सब ठीक ठाक स्थिति, तो मदद कर देंगे तो अपना भी सब ठीक हो जाएगा। तो मां से कहा कि बहन को बुला लेते हैं। बोले हां मेरी भी इच्छा तो है लेकिन वो आएगी कहां। नहीं नहीं क्यों नहीं आएगी, बुलाएंगे तो आएगी ना। अब उसने असली बात तो बताई नहीं कि हमने उसके दहेज देने में भी गड़बड़ी की थी। 12 साल बीत गए बुलाए ही नहीं। भोजन ने कहा नहीं अब तो मैं जाता हूं स्वयं लेकर के आऊंगा, जबकि उसके भी मन में स्वार्थ था कि इससे कुछ लाभ मिल जाए। जाता है, बहन देखती है बड़ी प्रसन्न होती है, बोले कितना भी गैप हो जाए बीच में मायके वाला कहीं से दिख जाए तो बड़ी खुशी होती है। माताओं का अनुभव होगा शायद, ऐसा बोलते कि मायके का कुत्ता आ जाए ना उसको देख के भी खुशी होती है, और उस कुत्ते को यदि ससुराल वाले भगाए तो बोलती नहीं मत भगाओ मेरे मायके से आया है। तो भले सोतेला भाई था तो क्या हुआ, 12 वर्षों के बाद भी आया तो क्या हुआ, बहुत खुश हो गई। कहने लगी अच्छा इतने दिनों के बाद तुम्हें याद आया। वो कहने लगा बहन मैं क्या करूं, मैं तो छोटा था मेरे घर में चलती नहीं थी, अब थोड़ा बड़ा हुआ हूं तो जबरदस्ती करके आया कि मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा। अपने पति से कहती क्या करूं जाऊं ये लेने आए, मेरी भी इच्छा तो है जाने की, बचपन के सहेलियां सब होगी उनके साथ थोड़े पुरानी बातें करेंगे मन बहल जाएगा। हृदय से कहा ठीक है जाऊं, 12 वर्ष हो गए जाना ही चाहिए। अब भोज के साथ जब चल पड़ती है मायके के लिए तो रास्ते में भी जहां जहां पड़ाव था रुकना पड़ता था वहीं शिव जी की पूजा करना अपना नियम जारी रखा। अब ये भोज जो था थोड़ा संस्कार तो अच्छे थे नहीं इसके, बोले मैं तो ये मानता हूं कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है जीजा जी की मेहनत और तुमने उनकी सहायता की, इसमें इस पत्थर की पूजा करके तुम्हें क्या मिल रहा है। वो बोली अरे तुम इसको पत्थर बोलते, आज जो कुछ भी मेरे पास है सब इनकी कृपा से है, तुम्हें क्या पता है। लेकिन नास्तिक व्यक्ति के सामने आप कितने भी भगवान की दुहाई दो, ये हृदय जो है ना हृदय जल्दी किसी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। क्या बात है कि प्रहलाद जी अपने मित्रों को किसी को छू दें तो उसमें एक चुंबक की तरह बिजली कौंध जाती थी, उसके अंदर भक्ति जग जाती थी। और शंका उठती है कि वही प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के गोद में भी तो कई बार बैठे, हाँ उसको क्यों नहीं भक्ति उसके मन में जगी, क्या कारण था। तो उसका तो यही जवाब है कि करंट किसको लगता है, जिंदे को या मुर्दे को, मरे हुए को थोड़ी करंट लगता है। तो जिसका हृदय मर जाता है ना वहां करंट नहीं लगता। हिरण्यकश्यपु का हृदय पत्थर वाला था, मरा हुआ था, इसलिए प्रहलाद जी के उसके गोद में जाने पर भी उनके स्पर्श से भी कुछ असर नहीं होता था। और जो जीवित होगा वही करंट लगना है, जिसके हृदय में थोड़े भक्ति ग्रहण करने की क्षमता थी प्रहलाद जी छू दे और वो भक्ति में रम जाए। यही हाल था इस भोज का। बहन बोलती है कि जो कुछ है मेरे पास इनकी वजह से, और वो पूरे नास्तिक बोलते नहीं ये सब कुछ भी नहीं है। बातों ही बात में एक दिन तो गुस्से में आकर के उसने शिवलिंग को उठा के तालाब में फेंक दिया। बेचारी बड़ी दुखी हुई, अब करे तो करे क्या। इतने में थोड़े दिन के बाद देखती क्या है, अब उधर जो उसका पति था जिसने भेज दिया था इधर, उधर राजाओं ने आक्रमण कर दिया और वो पुनः राज्यहीन हो गया। जब आता है इधर अपने ससुराल में, भोज लाया था क्यों बहन को, सहायता पाने के लिए कि इससे कुछ मदद मिल जाएगी। अब वो पुनः बहनों आ गए इससे मदद लेने के लिए कि हम राज्यहीन हो गए हम तुम्हारी मदद चाहे। तो वो लोग बोले देखो हम तो पहले से कमजोर, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। नास्तिक व्यक्ति आस्तिक के सहारे से तो लाभ उठाता है, लेकिन जब नास्तिक को मदद करने की बारी आ जाए तो कन्नी काट के साइड हो जाते हैं। इसका उदाहरण देखना तो आज भी देख लो, जितने संस्थान आदि खुले हैं, अन्नशाला अन्न क्षेत्र, दवाई देने का काम, वस्त्र देने का काम, जो आस्तिक करते नास्तिक कभी नहीं करते। नास्तिक तो बल्कि चाहते ये सब भी बंद हो जाए। हाँ जरूर चंदा उठाएंगे, किसके लिए, कुर्सी पाने के लिए, वोट पाने के लिए, चंदा उसको भी चाहिए, लेकिन एक चंदा होता है लोक कल्याण के लिए और एक चंदा होता है अपने कल्याण के लिए। लोक कल्याण के नाम पर भी लोग अपनी रोटी भी सेक लेते उसके साथ साथ, ये इसमें अपना मन गवाह होता है कि हम ले रहे हैं किस नाम पे और कर क्या रहे, इसमें तो अपने आत्मा ही गवाह है। अब जब देखा भाई ने कि बहन के ऊपर विपत्ति आ गई, उसने भी मुंह फेर लिया। मां तो पहले से थी वैसे सौतेली, जैसा उसका भाव था वही पुनः पनप गया। बोले अब इससे तो कुछ होना जाना है नहीं, अपने पति के साथ चल पड़ती है। वहां से पति पूछता है कि जो तुम्हारे पास शिवलिंग था वो कहां गया? बोले इसीलिए तो ये सब अभी उल्टा फल मिलने लगा ना, इसने फेंक दिया। तो बोले क्यों फेंकने दिया? बोले मुझे मालूम नहीं था, मजाक तो उड़ाता था, लेकिन इतना विश्वासघात करेगा, उठा के फेंक देगा तो मैं सावधान रहती, मैं सावधान थी नहीं, इसको मौका मिल गया इसने उठा के फेंक दिया। बोले चलो इसमें भी भगवान की कोई मर्जी होगी। रास्ते में चलते चलते वहीं पहुंचती है जहां पर धोबी लोग, पूरा वही दिन होगा इसी के लिए इकट्ठे हुए थे, और उसने आप बीती सुनाई कि मेरे साथ ये सब हुआ। तो धोबी ने वहीं से शिवलिंग पुनः निकाल करके ढूंढ के उसको दे दिया, और बड़ा दुख भी प्रकट किया कि आपकी पूजा खंडित हुई, अच्छा नहीं हुआ। जो भी है, पुनः पूजा प्रारंभ करती है, रास्ते में जाती है, पहले आता है ब्राह्मण का घर, वहां रुकती है एक रात। वो ब्राह्मण जो है मजाक उड़ाते, क्या इस पत्थर की पूजा कर इससे क्या मिलेगा? पति से बोलती चलो यहां से, जब अपना भाई भाई नहीं हुआ तो और क्या होंगे। खाना भी नहीं खाती, और बोलते वो ब्राह्मण बोले अरे भोजन तैयार है, भोजन तो करके जाओ। बोले ना ना, हमें भोजन करना ही नहीं। दूसरे जगह जाती है, दूसरे पड़ाव में, वहां क्षत्रिय का घर आता है, उसका भी वही व्यवहार, वो भी नास्तिकता का ही व्यवहार करता है, तो वहां भी वो खाना नहीं खाती। और पति बोलता है कि जब तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। दोनों मानो एक, कई बार आवेश में आकर के व्रत हो जाता है। कभी आप लोगों को गुस्सा आ जाए ना, दिन भर न खाओ तो समझ लेना आज एकादशी हो गई, अच्छा ही हुआ और क्या। और एकादशी के दिन यदि खा लेना धोखे से, तो किसी ने कहा एकादशी नहीं धोखादशी है। हाँ, उसमें यदि वैष्णव स्मार्ट वाले एकादशी खंडित हो जाए तो वैष्णव वाले कर लो, द्वादशी विद्या एकादशी करना है तो करना ही है। वैश्य का घर आता है, शूद्र का घर आता है, सभी जगह यही ताने सुनने को मिलते हैं। आखिर परेशान हो जाती है, लेकिन अपने पूजा करना भूखे रह करके ये जो नियम था उसका प्रभाव ये हुआ कि रास्ते में देखता है हृदयेश अपने सेनापति और मंत्री को आते हुए, तो लगा ये तो दूसरा राजा बन गया, उसका मंत्री उसके सेनापति है, कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहा है। जैसे छिपने की कोशिश करने लगा, उतने वो दोनों वहां समीप में पहुंच गए, घोड़े से उतर करके, और एक भारतीय परंपरा के अनुसार जैसे तलवार से राजा को नमस्कार किया जाता है वैसे नमस्कार किया। बोले महाराज, जो राजा बन गए थे आपको, जो परास्त कर दिया था, उनके बड़े मनमानी आचरण होने लगे, कल रात ही हमने उनके मौत के घाट उतार दिया, और मैं आपको खोजने के लिए निकला, आप मिल गए, अब चलिए। यह सब किसका परिणाम हो रहा है? शिव जी के पूजन का फल है। कैसे काम होता रहता है, बिगड़ता रहता है, इसी समझ में आ जाता है। कैसी भी परिस्थिति आए, नहीं तो लोगों का क्या होता है, कई बार घर में सत्संग कर रहे, पूजा कर रहे, और कभी ऐसी दुखद घटना घट गई, हम नाम नहीं लेंगे, कई ऐसी जगह है, वहां पर वो घर में राधा कृष्ण की मूर्ति रखे थे, महीने महीने में सत्संग का आयोजन करते थे, लोगों को बुलाते थे, खूब भंडारे भोज हो, और एक बार जवान लड़का जब उनका गुजर गया तो राधा कृष्ण की मूर्ति उठा के चौराहे पे फेंक दिया, तोड़ ताड़ के रख दी। क्या मिला हमें पूजा करके? यही दुख मिलना था। ऐसा कब अश्रद्धा मन में आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए प्रेम का भाव दृढ़ रहे, कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों न आ जाए, आसपास वाले भी ताने मारेंगे, रिश्तेदार वाले भी सुनाएंगे, इतने सत्संग करते हो, मंदिर जाते हो, क्या मिला आपको? ऐसे समय के तो प्रतीक्षा करते रहते, कब इसको दुख आए और मैं सुनाऊं। लेकिन नहीं, भगवान है घर, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो ये जो चारों घरों में रह करके और धोबी का जो पुनः मिलना हुआ है, बोले ये सुधीर नाम के और कोई नहीं, जिसके सुंदर बुद्धि होती है ना, वही सुधीर है। और जब उसको बरही नाम की अग्नि स्वरूपा पत्नी मिलती है, तो जब बुद्धि और इंद्रिय रूपी अग्नि, इंद्रिय से जो विषय का उपभोग हो रहा है, अब बाहर के विषयों में न जाकर के अंदर ही अंदर अग्नि जो प्रकट हो रही है, उससे फिर राधा पैदा होती है। राध्यते इति राधा, आराधना, आराधना भी बढ़ती है तो आराधना के लिए फिर क्या चाहिए, बोले हृदय के साथ उसका मिलन होता है, वही उसका पति हृदयेश है। लेकिन बीच में क्या गड़बड़ी होती है, ब्रह्माकार वृत्ति बनने पर भी, आराधना करने पर भी, कभी कभी जब दीप्ति रूपी सौतेली मां आ जाए तो दीप्ति को बोलते चमक, और संसार के चाकचिक के चमक को देख करके कभी कभी राधा को भी परेशानी तो होती है, और किधर लग जाती तो आ जाता उसका भाई भोज। भोज क्या है, भोग को ही भोज बोलते हैं। जब हम थोड़े आराधना से हट करके भोग की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, दीप्ति मां के पास चले जाते हैं, तो बहुत परेशानी आती है। उस परेशानी का जो दोबारा सामना हुआ है, यदि एक बार व्यक्ति अमीर हो, पहले तो गरीब हो, फिर अमीर बने, फिर गरीब बन जाए, और फिर यदि अमीर बन जाए, तो समझ लियो कितने सावधान होगा ना। ध्यान देना आप लोग, पहले तो गरीब है, फिर अमीर बना, फिर वो अमीरी चली गई, गरीबी आ गई, और फिर उस गरीबी से हट करके अमीरी आई, अब वो दोबारा गलती करेगा क्या। बोले धोबी का जो मिलना है, शुभ कर्म से स्थूल शरीर की सफाई होती है, योग से प्राण की शुद्धि होती है, उपासना से मन की शुद्धि होती है, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। ये जो पांच कपड़े देने का विधान है ना, श्राद्ध में पंडित जी को भी बोलते पांच कपड़े देना, ये पांच कोषों से विलग होकर के जब एक साइड हो जाते हैं। अच्छा, हम कपड़े कितने भी साफ पहन ले, यदि खिलाने वाले का कपड़ा साफ न हो तो अच्छा होगा क्या। आप तो अपने घर से धुले कपड़े पहन के परफ्यूम डाल के गए रेस्टोरेंट में खाने के लिए, और उस वेटर ने कितने पुराने कपड़े पहन रखे, कितने दिनों की गंदगी ले रखी है, उसके तरफ हम ध्यान देते हैं क्या। और यदि उसके हाथ का खाएंगे तो फिर हमारा मन खराब होगा कि नहीं होगा। इसलिए उसने चारों जगह भोजन किया ही नहीं, क्योंकि वो सब के सब अशुद्ध भाव वाले थे, शिव जी की पूजा देखते हुए मजाक उड़ाते थे, इसलिए कहा यहां हमें नहीं खाना है। जब इस तरह से दोबारा उस भोग में नहीं पड़ते, सावधान हो जाते ही बड़े मुश्किल से सफाई करके कपड़ा पहना है, अब दोबारा गंदगी को नहीं आने देना। यह है एक बार ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित हो जाने के बाद, अब दोबारा उस वृत्ति से हमें च्युत नहीं होना है, भटकना नहीं है। ये जब राधा अपने हृदय के साथ एक हो जाती है, भोग तो उधर मारा जाता है, क्योंकि जिस मंत्री ने मारा था ना हृदय के पराजित किए राजाओं को, तो उसके जो राजकुमार थे सोचा कि राजा भोज ने इसकी सहायता की, इसलिए इसने विजय प्राप्त की, तो उसने भोज के राजधानी पे आक्रमण कर दिया, भोज उधर मारा गया। अब दीप्ति और जो सुधीर है, दोनों बुजुर्ग हो चुके थे, उनको जेल में डाल दिया। हृदयेश को पता लगा कि हमारे सास ससुर जेल में है, उन्हें तो अच्छा नहीं हुआ, उसने पत्र लिखा हमारे सास ससुर को छोड़ दो। तो उधर से जवाब आया कि सास ससुर को तो हम छोड़ सकते, राज नहीं लौटाएंगे। बोले राज तुम भले ही अपने पास रखो, सास ससुर अब बुजुर्ग हो चुके, इनकी सेवा हम करेंगे। जब वहां आते तो दीप्ति को पुरानी बातें याद आती कि हमने इसके साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन इनका वही प्रेम है, उस ग्लानी से वो मर जाती है। और सुधीर का जो बुढ़ापा है, तो बेटी पूजा करती है तो उसके भी मन में आया कि मैं भी यही पूजा करूं, तो सुधीर का भी कल्याण हो जाता है, राधा का भी कल्याण हुआ, हृदयेश का भी कल्याण हुआ, और जो जो इसमें गड़बड़ करने वाले थे चाकचिक्की और भोगवृत्ति, इन सबका नुकसान हुआ। ये कथा तो लगती है कहानी जैसे, लेकिन इसको अध्यात्म में घटाओ तो वास्तव में जिस बुद्धि के अंदर एक बार ब्रह्माकार वृत्ति बनने में कितना समय लगता है, पूरा जीवन सत्संग करो, कुछ करो, और एक बार वो चमक दिख जाए और उसमें यदि टिकने का प्रयास करे तो समझ लेना चाहिए विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिव केवलो। हम सामान्य अनुभूति तो हो ही रही है, होगी, भगवान की कृपा है बाबुलनाथ के, लेकिन विशिष्टानुभूति के लिए अभी थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए फिर कल आओ, देखते हैं। ठीक है, हरिओम।